उसके लिए नाम तलाश करेंगे, तजवीज़ करेंगे, लिहाज करेंगे, या बेशर्त ला करेंगे, या बेशर्त शय करेंगे, या ला बेशर्त शय या बेशर्त ला शय। ये जो इस्तिलाहे मंतक में है इसकी मानवियत है। अब जाहिर है बिल्कुल फनी बहस छोड़ के इस्तिलाहें मैंने ऐसे ही जिक्र करनी, जहन में पड़ी रहेंगी, कान में पड़ी रहेंगी, एहसास होगा कि कभी टकराया था ये लफ्ज कान के पर्दे से। देखिए इसका भी फायदा होगा। अभी हाल की बात है, अब इतनी भी हाल की नहीं, लेकिन कोई मेरा ख्याल है कि 10-12 साल पहले फ्रांस के एक साइंसदान ने एक नया नजरिया पेश किया जिससे साइंस की बिरादरी में बड़ा इनकलाब बरपा हुआ, बड़ी बहस चल पड़ी। और अहले दीन के लिए भी वो बहस अहम थी और अहम है। उस साइंटिस्ट का नाम गालिबन जैक्स बेनवेनिस्ट है। डॉक्टर बेनवेनिस्ट ने एक नजरिया पेश किया था, थ्योरी ऑफ मेमोरी ऑफ वाटर। थ्योरी ऑफ मेमोरी ऑफ वाटर क्या है? इसी लंदन में बड़ा हंगामा हुआ था। लंदन से एक मैगजीन शाया होता है, जर्नल शाया होता है साइंस का, जिसका नाम है नेचर। बहुत मेयारी पर्चा है। नेचर में अगर कोई किसी साइंटिस्ट का मकाला छप जाता है तो उसके लिए बाइस इज्जत समझा जाता है। और प्योर साइंटिफिक और प्योर रिसर्च पेपर्स उसमें छपते हैं, पॉपुलर साइंस की का मैटर उसमें नहीं छपता है। ठोस तहकीकी मकाले, नजरिया साज मकाले। नेचर के एडिटर के पास जब जैक्स बेनवेनिस्ट ने अपना पेपर भेजा जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ मेमोरी ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया वो पेपर और कहा यह बहुत बड़ा साइंटिफिक फ्रॉड है। जाहिर है कि वो फ्रॉड नहीं था। तो डॉक्टर जैक्स बेनवेनिस्ट ने एहतजाज किया और फिर साइंस बिरादरी दो हिस्सों में बढ़ गई। बहुत से लोग कहने लगे कि ये जैसे गैलीलियो और दूसरे बड़े साइंसदानों के नजरियात थे कि बाद में ये 150 बरस बाद रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, उस तरह का नजरिया है। और कुछ ने जाहिर उनका साथ नहीं दिया। ये थ्योरी थी क्या? और मैं क्यों कह रहा हूं कि इससे अहले दीन को भी कंसर्न होना चाहिए। थ्योरी ये थी कि उसने ये तजर्बा करके देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जब किसी एलिमेंट से कहीं पर रिएक्ट होते हैं या टच होते हैं, कोई साबिका पड़ता है, तो वो साबिका उन मॉलिक्यूल्स में देर तक बाकी रहता है। ये मुख्तलिफ तरीकों से उसने तजर्बात करके साबित किया। अब उसकी साइंटिफिक तफसील है। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज कर दूं, इस नजरिए से घबराए इसलिए लोग कि चूंकि इस नजरिए से उस मेडिसिन की उस डिसिप्लिन को तकवियत पहुंच रही थी जिसे होम्योपैथी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो डाइल्यूशन का अमल होता है वो इतना ज्यादा होता है कि फिर ओरिजिनल पार्टिकल्स तो शायद ही रह जाते हो, उसको तकवियत पहुंच रही थी। अगर उस सिस्टम को तकवियत पहुंचता तो जाहिर है कि ये जो सरमायादारों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं इंसानों की जिंदगियों को से मजाक करने के लिए, जो आप हजरात को दवाएं खिलाई जाती हैं और एक दवा खिलाई जाती है किसी एक मरज के लिए और नतीजे में 2-4-10 नए मरज पैदा हो जाते हैं, खुद हर दवा जो आती है आप उस दवा पे नजर डालें, उसके साथ जो कागज आता है उसमें लिखा होता है कि इसमें कितने साइड इफेक्ट्स हैं। और जो बुजुर्ग हजरात हैं जो दवाएं इस्तेमाल करें शुगर की, हार्ट की, इन चीजों की, ब्लड प्रेशर की, वो जानते हैं कि एक दवा के इस्तेमाल के बाद फिर क्या मजीद अजाब में मुबतला हो जाते हैं। बल्कि मैं, मेरा ये जुमला याद रखिएगा कि जदीद ये जो दवाएं हैं एक मरज का इलाज करने के लिए अगर इन्हें इस्तेमाल कीजिए तो ये श्योरिटी तो है नहीं कि उस मरज का भी इलाज हो जाएगा, लेकिन ये श्योरिटी जरूर है कि 2-4-10 नए मरज और पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो कदीम तर्ज है, जो जड़ी बूटी के जरिए से, गजा के जरिए से इलाज का तरीका है, उसमें यह श्योरिटी है कि जो मरज है वो भी ठीक हो जाएगा और उसके साथ 2-4 और मरज जो हैं बुनियादी अगर पैदा हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। ये है। बहरहाल मिसाल ये अर्ज कर रहा था कि उस शख्स